निष्ठा वृषभ पर्वा की पुत्री सा अनुगा अपनी सखियों सहित तदा उस समय स्वानाम अपनी तत् वह संकट कठिन परिस्थिति को विक्ष्य देखकर तत् उससे अर्थस्य लाभ का च भी गौरम महानता दिव्यानी को पर्यचर सेवा की स्त्री सहस्रेण अन्य हजारों स्त्रियों सहित दासवत दासी के समान। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा है। शिला प्रभुपाद महाराज की अनुवाद इस प्रकार है। वृषभ पर्वा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उनकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतएव उसने शुक्राचार्य का आदेश शिरोधार्य किया और दास की तरह उनकी सेवा की। उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को दिव्यानी को सौंप दिया और शर्मिष्ठा ने अपनी अन्य हजारों सखियों सहित दासी की तरह उसकी सेवा की। तात्पर्य, प्रारंभ में हम शर्मिष्ठा तथा दिव्यानी के विषय में देख चुके हैं कि शर्मिष्ठा की अनेक सखियां थी। अब ये सखियां दिव्यानी की दासी बन गई। जब किसी लड़की की शादी क्षत्रिय राजा से होती थी तो उसकी सारी सखियों को उसके साथ ससुराल जाने की प्रथा थी। उदाहरण, जब वसुदेव ने कृष्ण की माता देवकी से विवाह किया तो उन्होंने उनकी छह बहनों से शादी की और उनकी जितनी सखियां थी वे भी साथ साथ ससुराल गई थी। राजा को न केवल अपनी पत्नी का भरण करना होता था अपितु अपनी पत्नी की अनेक सखियों तथा दासियों का भी पोषण करना पड़ता था। इनमें से कुछ दासियां गर्भवती हो जाती थी और उनके बच्चे उत्पन्न होते थे। ऐसे बालकों को दासी पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता था और राजा उनका भी भरण करता था। स्त्रियों की जनसंख्या सदैव पुरुषों से अधिक रही है, किंतु स्त्री अपने को पुरुष के साथ सुरक्षित मानती है। अतएव राजा उन अनेक लड़कियों का भरण करता था जो रानी की सखियां या दासियां होती थी। कृष्ण को गृहस्थ जीवन में हम 16,108 पत्नियों से विवाहित पाते हैं। ये दासियां नहीं थी अपितु रानियां थी और कृष्ण ने इनमें से प्रत्येक के भरण पोषण के लिए उतने ही रूपों में अपना विस्तार किया था। यह सामान्य लोगों में नहीं है। अतएव भले ही राजाओं को अनेक दासियों तथा पत्नियों का पालन करना पड़ता रहा हो, लेकिन उन सबों के पृथक पृथक निवास नहीं होते थे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदंतिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की, श्री श्री निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ये नौवां स्कंध का 18वां अध्याय, राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति, इस अध्याय को हम कई दिनों से देख रहे हैं। पिछले रविवार को मैंने इसी अध्याय के एक श्लोक में सार के रूप में संक्षेप में उसका कथा कहा था, और फिर उस दिन तो नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव दिन था तो ज्यादा वर्णन उसी पे मैंने किया था। इस कथा की पूर्व घटना आप सब जानते हैं कि शुक्राचार्य की बेटी दिव्यानी जो ब्राह्मण पुत्री है, वो वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा जो उसकी मित्र है और उनकी अनेक जो सेविकाएं थी उन सब लोगों के साथ में एक जगह तालाब में स्नान कर रही थी। निर्वस्त्र थे वो सब लड़कियां, वहां से शिवजी पार्वती संग बैठ के जा रहे थे अपने नंदी पे सवार होकर। तो जब उन लोगों का ध्यान गया कि शिवजी जा रहे हैं तो स्वाभाविक सज्जन स्त्रियों ने अपना अपना वस्त्र लेकर अपने शरीर को ढक दिया। तो उस हलचल में क्या हुआ, शर्मिष्ठा जो वृषपर्वा राजा की बेटी थी और दिव्यानी जो ब्राह्मण की बेटी है जो उच्च कक्षा की मानी जाएगी, उसके वस्त्र को पहन लिया गलती से। दिव्यानी को गुस्सा आ जाता है कि ये क्षत्रिय राजा की बेटी है, मेरी सेवा के लिए आई है, ब्राह्मण की सेवा के लिए आई है, और इसने ऐसा कार्य क्यों किया कि मेरे ही वस्त्र को पहन लिया। उसे थोड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में उसने उसको गाली गलौज कर दिया कि अरे तुम लोग तो हमारे से नीची कक्षा के लोग हो और तुम में ऐसा दुस्साहस कैसे हुआ कि तुमने मेरे वस्त्र को धारण कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी विशेष करके शर्मिष्ठा के साथ ऐसा व्यवहार, क्योंकि शर्मिष्ठा एक राजा की बेटी थी, तो सामान्य दासी तो नहीं थी, तो वो भी राजा की बेटी क्षत्रियाणी थी तो को भी तो अपना एक स्वाभिमान होता है, अहंकार तो नहीं कहेंगे, स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान मान्य होता है, अहंकार मान्य नहीं है शास्त्रों से, लेकिन हर जीव को अपना स्वाभिमान मान्य होता है। और सबसे बड़ा स्वाभिमान जीव का क्या होता है किसे पता है? शास्त्र स्वाभिमान को परमिशन दे रहा है, अभिमान को नहीं दे रहा है। तो सबसे बड़ा स्वाभिमान शास्त्र में क्या बताया गया है, किसी को पता है जीव का सबसे बड़ा स्वाभिमान क्या है? क्या बोले? कृपया जिन्होंने बताया थोड़ा जोर से बताएंगे। यस करेक्ट, वेरी गुड, 100% करेक्ट। मैं कृष्ण का दास हूं। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास है, ये हमारा स्वाभिमान है, और इस स्वाभिमान का परमिशन शास्त्र हमें दे रहा है, मैं कृष्ण का दास हूं। लेकिन यहां पे जो ये झगड़ा चल रहा है ये इस स्वाभिमान का झगड़ा नहीं चल रहा है। एक शर्मिष्ठा सोच रही है मैं राजा की पुत्री हूं, क्षत्रियाणी हूं, मेरी अनेक सेविकाएं हैं, दासियां हैं, मेरी अनेक मित्र हैं, और दिव्यानी सोच रही कि मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं, हाँ, जो कर्मकांड के प्रसिद्ध, बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड के सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, हाँ, मैं उसकी बेटी हूं, मैं ब्राह्मणी हूं और ये सब मेरी सेविकाएं हैं, इन दोनों में झगड़ा हो गया, वो कहती है तुम भिखारी हो, तुम ये हो वो हो, दोनों की बात चली। आगे चल के शर्मिष्ठा ने तो देवयानी को धक्का ही दे दिया, एक कुएं में फेंक दिया नग्न अवस्था में, उसको वस्त्र भी नहीं दिया। तो ययाति महाराज उधर से जो क्षत्रिय राजा थे निकल लेते, उन्होंने जब कुएं में देखा कि अरे एक लड़की, कौन है उन्हें पता नहीं था कि ये ब्राह्मण कन्या है, एक निर्वस्त्र अवस्था में कुएं में गिरी है, तो उनको हाथ दिया बचाने के लिए कि हाथ देकर उठा के मैं बाहर निकालू, तो उसे हाथ से खींचकर बाहर निकाला। अब वेदों की परंपरा यह है कि अगर कोई पुरुष युवान अवस्था में अगर किसी स्त्री का हाथ पकड़े विवाह के पहले, तो वो वेद के नियम के अनुसार उसका पति बन जाता है, आगे वही उसका पति बनेगा और उसी के संरक्षण में यह लड़की रहेगी। और विवाह के बाद तो यह कभी घटना होगी नहीं कि अन्य कोई पुरुष उसका हाथ पकड़े, ये संभव ही नहीं है। ये सब चीजें बहुत कठिन होती है समझना, सत्युग के समय के जहां धर्म ही प्रधान था उस समय के उन दिनों की ये बातें, आजकल के युग में ये संभव नहीं होता है। आजकल तो ऐसे ही सब लोग हाथ पकड़ के चलते रहते हैं, कॉलेजों में, ट्रेन में, सब जगह यही होता रहता है। ये अलग पूरा ही वर्णन है, ये शूद्र का कल्चर है एक्चुअली, लेकिन ब्राह्मणों का, क्षत्रिय का, वैश्य का ये कल्चर नहीं होता है। जो पहले यही प्राधान्य था, धर्म था, वहां पे हंस वर्ण था। शिला प्रभुपाद जी कहते पहले तो केवल हंस ही वर्ण था। तो देव्यानी जो ब्राह्मण कन्या थी, वो आके बाहर आके कहती है अरे मैं एक कन्या हूं, अविवाहित कन्या, और आपने मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाला, तो आप मेरे पति हो गए। आप कौन है मैं आपको नहीं जानती, और मैं कौन हूं शायद आप नहीं जानते, लेकिन जो भी हो अब ये घटना घटित हुई है, ये न जानबूझकर मैंने ना आपने किया, इसका अर्थ ये दैव से, प्रारब्ध से ये बनाया गया घटना है, शायद दैव की यही इच्छा है, इसीलिए हम आपको पति के रूप में स्वीकार करते हैं। बाद में अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे ने दिया तो पता चला कि ये तो ब्राह्मण कन्या है और ये तो क्षत्रिय है। तो इसे एक्चुअली प्रतिकूल कहते हैं, इस विवाह को प्रतिकूल विवाह कहा गया है। क्यों? क्योंकि उच्च कक्षा की स्त्री नीचे कक्षा के पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती, उल्टा हो सकता है। या तो समान कुल के होने चाहिए या स्त्री नीची होनी चाहिए, नीचे कक्षा की, तो उसे अनुकूल माना गया, वेद उसे स्वीकार करता है। लेकिन यह प्रतिकूल विवाह था, लेकिन अब क्या करें, वेद के नियम के अनुसार तो हाथ पकड़ लिया था, विवाह हो चुका था। तो देवयानी घर पे आके शुक्राचार्य को सब घटना बता देती है। तो शुक्राचार्य बोले कोई बात नहीं, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की निताई गौर प्रेमानंद, श्रील प्रभुपाद महाराज की। शुक्राचार्य जी बोले कोई बात नहीं, ययाति भी एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा है, लेकिन क्रोधित इस बात पे हुए थे कि शर्मिष्ठा ने क्यों ऐसा बर्ताव किया, कैसे उसे फेंक दिया कुएं में। तो शर्मिष्ठा के पिताजी के पास गए, वृषपर्वा के पास, और कहते कि तुम्हारी बेटी ने ऐसे क्या क्यों किया, बहुत क्रोधित थे। और राजा क्योंकि वो धर्म को जानते थे, और विशेष करके शुक्राचार्य जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण के तपोबल को जानते थे, वो समझते थे कि अगर क्रोध में इन्होंने श्राप दिया तो बात खत्म हो जाएगी, हम सब जल के राख हो जाएंगे, न राज रहेगा, न मैं रहूंगा, न बेटी रहेगी। तो उसे संतुष्ट करना होगा किसी भी परिस्थिति में। तो नम्रता से हाथ जोड़कर संतुष्ट करने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना की, बोले क्षमा कर दो, और आप जो आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि वृषपर्वा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य अगर अप्रसन्न हो गए तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है, और वो अगर वो प्रसन्न हो गए तो भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ब्राह्मणों की संतुष्टि ही व्यक्ति का पुण्य बनाता है और उसे भौतिक सुविधा प्रदान करता है, और ब्राह्मणों की असंतुष्टि उसका विनाश कर सकता है, चाहे कितना भी बड़ा राजा हो। जैसे दुर्योधन बहुत बड़ा राजा था, लेकिन अपने ही गुरु द्रोणाचार्य जो एक ब्राह्मण थे उसकी असंतुष्टि का ही हमेशा कार्य करता, तो उसका विनाश हो गया। हाँ, उसने ऐसे अनेक कार्य किए जहां पे ब्राह्मण और वैष्णव असंतुष्ट रहते थे, तो उसका विनाश हो गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो हमेशा ब्राह्मणों की और वैष्णवों की संतुष्टि का कार्य करते थे, थोड़े साल भले उन्होंने दुख और कष्ट उठाए दुर्योधन के चलते हुए, लेकिन आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं और उनका गौरव आज भी लोग गा रहे हैं। तो वृषपर्वा सोचते हैं कि इनको मैं कुछ संतुष्टि के लिए जो उनको चाहिए वो सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो शुक्राचार्य ने बताया, देवयानी को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम कैसे संतुष्ट हो सकती हो। तो देवयानी सोचती है कि एक ही शर्त हो सकती है, अगर यही लड़की मेरी दासी बने तो मैं संतुष्टि मुझे होगी, अन्यथा वो संतुष्ट नहीं हो सकती, उसने बहुत बुरा व्यवहार किया है मेरे साथ। तो कहती है कि शर्मिष्ठा मेरी दासी बने और यहां तक कि मेरा अगर विवाह हो जाए तो मैं जहां जाऊंगी वहां भी दासी बन के चले, और उसकी जितनी दासियां या मित्र है वो सब भी मेरे साथ दासियां बन के चले। तो ये कैसे संभव है? शिला प्रभुपाद जी लिखते कि सतयुग के समय में और आने वाले में कलयुग यानी द्वापर युग के अंत तक ये प्रथा थी कि क्षत्रिय राजा अगर किसी राजकुमारी से विवाह करता है तो उसकी जितनी भी दासियां और मित्र सखियां होती है वो सब उसके साथ विवाह करके आएगी। हालांकि ये दोनों विवाह में एक तफावत ये है कि जो मेन रानी है वो महल में रहेगी और दासियां और जो मित्र हैं रानियां या जो भी हो वो सारी अन्य निवास स्थानों में रहेगी, लेकिन राजा उनका पालन पोषण करेंगे, उसको भी पत्नी का दर्जा देते हैं और उसे भी पुत्र प्रदान करते हैं, यानी उसका संग भी करते हैं। हालांकि ये क्षत्रिय राजा कोई काम व संग नहीं करेंगे, अब उनकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि इनका पालन पोषण करके इनका इनकी जिम्मेदारी पूरी उठाते हैं, तो इनको पुत्र प्रदान करना भी एक धर्म के अनुसार क्षत्रिय राजा का कर्तव्य हो जाएगा। क्योंकि वेद कहता है कि अगर क्षत्रिय के पास अगर कोई स्त्री आके कहे कि मुझे पुत्र प्रदान करो, आपसे मुझे एक पुत्र चाहिए, वो मना नहीं कर सकता, लेकिन शर्त वो क्षत्रिय राजा होना चाहिए, शर्त वो उसको पालन करने के लिए जीवन भर तैयार होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं, ऐसा नहीं कि आजकल के तथाकथित क्षत्रिय राजस्थान में या यूपी में इस तरह से व्यवहार करते हुए कहते नहीं ये तो वेदों में कहा गया, ऐसा नहीं चलेगा। पालन पोषण करने की कोई क्षमता नहीं है वैसे नहीं चलेगा। तो इस राजा ने वो ययाति महाराज ने अनेक लोगों के साथ मिस विवाह में वो आई दिव्यानी के साथ, ये सारी स्त्रियां उनका रक्षण किया पालन पोषण किया। लेकिन शुक्राचार्य ने विवाह के समय क्या शर्त रखी, बोले कि देखिए आगे चल के आप शर्मिष्ठा के साथ कभी भी संग मत करना, ये एक आदेश दे दिया कि शर्मिष्ठा के साथ कभी मत संग करना, यह आपके लिए घातक हो सकता है। यानी उनके हृदय में एक्चुअली एक प्रकार की ईर्ष्या थी कि शर्मिष्ठा को कोई सुख ही ना मिले क्योंकि इसने ऐसा दुर्व्यवहार हमारी बेटी के साथ किया है। लेकिन आगे चल के ऐसी घटना घटित हुई कि शर्मिष्ठा ने जब देखा कि देवयानी को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ ययाति महाराज से, तो स्वाभाविक है स्त्री से रहा नहीं जाएगा, उसे भी तो अपने पति से एक पुत्र चाहिए। शास्त्र कहता है और शिला प्रभुपाद जी भी कहते हैं बहुत बार कि गृहस्थी में पुत्र या पुत्री होना अति आवश्यक है। जिस गृहस्थी में बच्चा नहीं है वो गृहस्थी गृहस्थी नहीं, एक वीरान रण प्रदेश के जैसा हो जाएगा, वो गृहस्थी का कोई मतलब नहीं है जहां पे बच्चा नहीं है। गृहस्थी में एक बच्चा होना आवश्यक है। हाँ, प्रकृति की व्यवस्था भगवान पुत्र दें या पुत्री दें उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन बालक होना आवश्यक है। गृहस्थ लोग अगर ये कहें कि नहीं हमें बच्चा नहीं चाहिए तो वो वेदों के विरुद्ध है, वो गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध है, वो वर्ण के विरुद्ध है। हाँ, वो गृहस्थ कभी भक्त नहीं बन पाएंगे, सुखी नहीं बन पाएंगे, उनके लिए बिल्कुल ऐसे असंभव होगा। एक कहीं कहीं अपवाद जाएंगे वो अलग बात है, जैसे देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में वो बोले कि हमें पुत्र नहीं चाहिए, हम तप करेंगे, जब तक तप करेंगे तब तक हमें भगवान स्वयं आके ये ना बताएं कि हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। तो बात वहीं पे चल गई कि पुत्र तो चाहिए, लेकिन पुत्र कैसा चाहिए, भगवान या भगवान का भक्त तो चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी कहते थे कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, मैं 100 पुत्र तैयार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मुझे ये गारंटी मिल जाए कि मेरे घर में वैष्णव पुत्र ही जन्म लेंगे, तो अन्यथा मैं गृहस्थ ही नहीं बनूंगा। वो ब्रह्मचारी रहे पूरा जीवन, सन्यासी रहे, क्यों? क्योंकि वो कहें कि नहीं मैं गृहस्थ बनूंगा तो पुत्र तो प्राप्त करना है, अब पुत्र प्राप्त करूंगा तो उसका गारंटी क्या कि पुत्र मिलेगा, कि पुत्र का अर्थ है जो नरक से पिता को तारेगा, या फिर कोई राक्षस पैदा हो सकता है जो अवैष्णव हो सकता है, अभक्त हो सकता है। तो शर्मिष्ठा भी ययाति महाराज से जाके विनंती करती है और कहती है कि मुझे भी पुत्र चाहिए। तो महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन उन्हें याद था उस समय ययाति महाराज को कि शुक्राचार्य का आदेश था कि इससे संगमत करो, लेकिन अभी एक धर्म संकट था, एक तरफ ससुर का आदेश था लेकिन दूसरी तरफ क्षत्रिय धर्म था कि अगर कोई स्त्री उनसे आके ये निवेदन करे कि मुझे पुत्र चाहिए और वो स्त्री उनकी स्वयं की पत्नी थी तो उसे मना भी नहीं कर सकते धर्म के हिसाब से, तो उसे भी एक पुत्र प्रदान करते हैं। और ये सहन नहीं हुआ दिव्यानी से। प्रायः स्त्रियों में ये ईर्ष्या पाई जाती है कि अन्य किसी स्त्री को सुख मिले तो उसे सहन नहीं होता है। हालांकि सतयुग में ये सब स्त्रियों में ज्यादा देखा जाता था, आजकल कलयुग में सभी लोगों में यह स्वभाव है, स्त्री हो, बच्चे हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, सभी में यह स्वभाव पाया जाता है। पशुओं में भी देखना, दो चिड़ियां झगड़ती रहेगी दाने के लिए, दो पंछी हमेशा झगड़ते हैं, दो कुत्ते झगड़ते हैं, ये हर जीव में ये स्वभाव पाया जाता है कि किसी की ईर्ष्या करनी है, किसी को मेरे से अधिक न मिले। क्यों ये ईर्ष्या होती है? क्योंकि इसका मूल कहां पे है? हमने भगवान का ईर्ष्या किया है इसलिए हम इधर आए हैं, तो वो मूल है ना, भगवान का हमने ईर्ष्या किया है, विरोध किया है, तो स्वाभाविक है कि भगवान के अंशों का तो ईर्ष्या और विरोध करेंगे। जब मूल का किया है तो अंश का करेंगे। अगर मान लो मेरा कोई शत्रु है तो वो स्वाभाविक ही मेरे बच्चों का शत्रु है, हालांकि मेरे बच्चों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, न जानते एक दूसरे को, न मिले हैं, न कोई व्यवहार हुआ है, लेकिन भाविक ईर्ष्या होते हैं। तो इसलिए जीवों के समाज में यह देखा जाता है कि हर जीव दूसरे से ईर्ष्या करता है, क्योंकि मूल में वो भगवान का ईर्ष्या करके यहां पे आया है। और इसलिए वेद शास्त्र आचार्य कहते हैं कि पुनः अगर तुम्हें भगवान का प्रेम स्थापित करना है तो शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी कि सभी जीवों को प्रेम करो, सभी जीवों के लिए अपने हृदय से ईर्ष्या निकाल डालो। अगर ये कोई विरला कर सकता है कि सभी जीवों को प्रेम करे, किसी की ईर्ष्या न करे, तो उस व्यक्ति के लिए स्वाभाविक ही भगवान से प्रेम करना संभव हो जाएगा। स्वाभाविक शब्द इसलिए कह रहा हूं कि स्वाभाविक यानी नेचुरल, उसे कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह एक सज्जन पिता या माता अपने पुत्र को स्वाभाविक प्रेम करते हैं, ठीक उसी तरह एक वैष्णव का हृदय ऐसा होना चाहिए, एक भक्त जिसे बनना है उसका हृदय ऐसा होना चाहिए कि वो स्वाभाविक ही सभी जीवों के प्रति प्रेम करें, सभी जीव। जो ये नहीं कर पाता उसके लिए वैष्णव बनना कठिन हो पाएगा, क्योंकि तुम अंश का अगर विरोध कर रहे हो, अंश को प्रेम नहीं कर रहे हुए, तो पूर्ण को तो कर ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो रहते हैं वो भगवान को प्रेम करते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन जीवों का विरोध करते हैं, ये इस तथ्य को नहीं समझ सकने की वजह से कनिष्ठ ही जीवन भर रहे थे। देवयानी के हृदय में ये ईर्ष्या थी कि इसको कैसे पुत्र मिल गया, उसने वापस पिता को जाके कंप्लेन किया। जैसे वो रोहिणी माता भी चंद्र सोम की पत्नी जाके दक्ष प्रजापति को हमने साथ कंप्लेन करती, अरे मेरे पति तो है दूसरी पत्नी के साथ ही रहते, मेरे साथ नहीं रहते, अन्य पत्नियां कंप्लेन करती, कभी ये करती, वो सब चलते रहता था। जब ज्यादा पत्नियां होगी तो स्वाभाविक यही होगा, एक पत्नी दूसरे पत्नी का ईर्ष्या विरोध करेगी। और इसलिए शायद वेद ने इस युग में मना कर दिया कि भैया ज्यादा पत्नियां मत रखो, एक को संभालना कठिन होगा, जब आपस में वो लोग लड़ाई झगड़ा करेगी, ईर्ष्या करेगी, तो असंभव हो जाएगा आपको उनको मेंटेन करना। तो कलयुग में ये बैंड कर दिया गया, मना कर दिया गया है। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं नहीं वो वेदों में अभी भी जो वेदों में बताया था वो चालू है, वो गलत है, कलयुग में ये मना कर दिया गया है ज्यादा पत्नियों को रखना वगैरह। शुक्राचार्य को वापस क्रोध आ गया, एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे ना, क्रोध आना स्वाभाविक था, गर्व रहता ही है, उसे वो लोग स्वाभिमान कहेंगे लेकिन ये अभिमान है। उसने क्रोध में आके ऐसा श्राप दे दिया, ययाति महाराज जैसे महान क्षत्रिय राजा को, आप वृद्ध हो जाओ। हाँ, ये बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। हाँ, जो बोला तो तुरंत हो जाता है, इतना तपोबल। आजकल के युग में कभी कोई क्रोधित होता है, किसी को कुछ गाली गलौज कर देता है, बोलते तेरा बुरा हो, सत्यानाश हो, तू ये होएगा वो होएगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं है किसी का कुछ है ना, कुछ नहीं होता है। बल्कि देखा जाता है कभी कभी उल्टा ही होता है, जिसका बहुत बुरा 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 बोला वो आगे जाके और बड़ा आदमी बनता है, उल्टा ही कुछ हो जाता है, क्योंकि ये बोलने वाले का कुछ तपोबल ही नहीं है, कुछ पुण्य ही नहीं है। हाँ, कुछ क्षमता ही नहीं, इसका बोलने से कुछ नहीं होएगा। ये एक विज्ञान है, पता है, जो इस प्रकृति में जो खम है ना, खम, हाँ, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश का एक हिस्सा जो खम है, या आकाश ही कह दो, ये एक्चुअली जो शब्द निकलते हैं हमारे शरीर के आकाश से, खम से जो शब्द निकलते हैं, ये प्रकृति में जाके इसका प्रभाव छोड़ते हैं। अब प्रकृति अगर उस खम में शक्ति है ना, तो उसका व्यवस्था करती है, अगर उस खम में शक्ति नहीं है तो उसका व्यवस्था नहीं करेगी प्रकृति। वो मैच होना चाहिए, वो पुण्य से मैच होता है। जैसे टीवी लगाते हैं और समझो दूर से कोई चैनल वाला एक सीरियल ब्रॉडकास्ट करता है या एक सिनेमा को ब्रॉडकास्ट करता है, तो आपके टीवी का फ्रीक्वेंसी और उसका फ्रीक्वेंसी मैच हुआ तो ही टीवी में वो सिनेमा दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। मैच नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आकाश में नहीं है वो सिनेमा, आकाश में है, आपका टीवी ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह आकाश में या प्रकृति में किसी के वाक्यों को पूरा करने की शक्ति है, लेकिन आपके वाक्य में वो शक्ति नहीं, वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, पुण्य नहीं, तपोबल नहीं है, नहीं होगा वो कुछ। प्राइम मिनिस्टर अगर इधर बाय चांस आ गए और बोले क्या पूरा मीरा रोड के इस रोड पे कचरा है, इसको साफ कर डालो, बस वो एक बार बोलेगा ना, कल से साफ सफाई शुरू हो जाएगी। और शायद जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर कभी दोबारा यहां नहीं आएगा, लेकिन अपने रास्ते 2-4-5 साल तो साफ ही रहेंगे, सुंदर रहेंगे। उसका इतना बल है कि उसने एक वाक्य में ये करके दिखाया। और हम लोग कहेंगे चिल्ला चिल्ला के सब लोग एप्लीकेशन कर करके थक गए, बीएमसी को साफ ही नहीं हो रहा है। हमारे शब्दों में, खम में, आकाश से निकले हुए शब्दों में कोई शक्ति नहीं है। इसको वृद्धापा दे दिया, बोले अरे तुम बुढ़े हो जाओ। अब ये महाराज तो बेचारे बड़े दुखी हो गए, क्योंकि युवान व्यक्ति जो ग्रेजुअली प्रकृति की व्यवस्था से वृद्ध हो रहा है, उसे भी वो मंजूर नहीं है। जो रोज का थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा हमारे पास आता है, वो हमें प्रिय नहीं है। हमें हमें बड़ा कष्ट होता है एक्चुअली वृद्ध बनने का, है ना, बड़ा कष्ट होता है। और यहां तो अचानक ही उसको पूर्ण वृद्ध बना दिया, श्राप देगा, अरे भाई तुम बुढ़े बन जाओ। इतनी सुंदर पत्नी थी, शर्मिष्ठा, देव्यानी, अनेक दासियां, सेविकाएं, अरे अचानक कहते वृद्ध हो जाओ। अरे ये राजा तो बेचारे मुश्किल में आ गए, चिंता करने लगे, अरे मैं अब क्या करूंगा, कैसे संग करूंगा। चालाक थे, बुद्धिशाली थे, शुक्राचार्य को हाथ जोड़ के कहते हैं आप मुझे ही वृद्ध बना दोगे, मैं आपका जमा ही हूं, तो आपकी पुत्री का ही क्या होगा, वो युवान है, उसकी संतुष्टि कैसे होगी, आप क्या कर रहे हो। तो वो भी सोचने लगे, अरे हाँ यार बात सही है, मैं क्रोध में आके बोल तो दिया, लेकिन ये तो मेरी ही बेटी का पति है, और कोई थोड़ी है। लेकिन ब्राह्मण के वाक्य एक बार निकल गए तो निकल गए, वापस लाना मुश्किल। वो श्राप दे दिया, उसको वापस नहीं खींच सकते, ब्राह्मण भी नहीं खींच सकता है। यहां तक कि भगवान भी कभी कभी कह देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे भक्त ने जो बोल दिया वो बोल दिया, अभी मैं भी उसको नहीं रोक सकता हूं। तो यहां पे अभी क्या करें। तो दूसरा तो वरदान दे सकते हैं ना, तपोबल अभी जमा है, तो बोले दूसरा वरदान दिया, बोले अगर कोई युवान व्यक्ति आपके साथ इस बुढ़ापा एक्सचेंज करने को तैयार है, आपका बुढ़ापा वो ले ले और आपकी उसकी युवान अवस्था आपको दे दे, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो बोले ये तो ठीक है, ये अच्छा सोल्यूशन वरदान मिला है। अब प्रॉब्लम है कि करेगा कौन एक्सचेंज। हाँ, इसकी कोई दुकान तो होती नहीं है कि पैसा देके एक्सचेंज ऑफर रहती है, दिवाली धमाका ऑफर सेल्स, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। ऐसा होता तो आजकल के वृद्धों को बहुत अच्छा हो जाता, और जो गरीब युवान लोग रहते हैं उन लोगों को भी शायद अच्छा होता था कि भाई चलो एकाध पूरा जीवन मेहनत करके भी 25-50 लाख लेंगे, लेकिन करोड़पति बुढ़े लोग आके एक एक करोड़ रुपया देके बुढ़ापा देके जाएंगे, युवान अवस्था लेके जाएंगे, शायद ये होता तो अच्छा होता था, ऐसे मुझे लग रहा है। बुढ़े लोगों के लिए अच्छा होता था, अंबानी वगैरह परिवार के लोग सब सोचेंगे कि चलो भाई एक्सचेंज ऑफर चालू है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब गरीब घर का युवान सोचेगा कि भाई चलो भाई फैमिली मेंटेनेंस के लिए वृद्ध तो वृद्ध बन के बैठे रहेंगे, उनका भी उद्धार हो सकता था, लेकिन ऐसा ऑफर तो था नहीं। केवल ये शुक्राचार्य जैसे तपस्वी ही दे सकते हैं। अब सबसे पहले ये अपने बड़े बेटे के पास गए यदु। अब यदु को कहते हैं कि बेटा देखिए, मैं वृद्ध हुआ श्राप से, और तुम तो जानते हो कि तुम्हारी जो माता है दिव्यानी, फिर ये शर्मिष्ठा और ये सारी माताएं हैं, ये सारी युवान अवस्था में है, ये मेरे पे आश्रित है, अगर मैं ही वृद्ध हो गया तो इन सब का क्या होगा। और ये तो सतयुग का समय था, ऐसा कोई विचलित होने वाली नारियां तो थी नहीं, आज के जैसा युग नहीं है, पति बुढ़ा हुआ तो जाने दो दूसरा विवाह कर लेंगे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। हालांकि आज की नारियां भारत में ऐसा नहीं करती, लेकिन विदेशों में ये सब चल रहा है आज, आने वाले समय में हो सकता है 25-50-100 साल के बाद भारत में भी ये होता रहेगा, उसकी कुछ झलकें दिख रही है, भारत में भी झलकें चल रही है। तो वो यदु ने सोचा कि अरे ये मेरा युवान अवस्था ले रहा है, यदु ने मना कर दिया। देखिए पिताश्री, वो मस्त कहता है बात, देखिए पिताश्री मैं एक युवान व्यक्ति हूं, मैंने अभी तक कोई भोग नहीं किया है, मैं अगर अपनी युवान अवस्था आपको दे दूं ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने कोई भोग नहीं किया है, लेकिन इच्छाएं सारी मेरे हृदय में और मस्तिष्क में है, तो मुझे आगे चलकर भक्त बनने के लिए बहुत कष्ट होगा, मैं आगे चलकर सन्यासी और अच्छा वैष्णव भक्त नहीं बन पाऊंगा, विरक्त भक्त नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैंने भोग विलास की कामना अनेक की है लेकिन उसका भोग नहीं किया और कर भी नहीं सकूंगा, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा और मैं ठीक से भजन ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ठीक से भजन नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जीवन निष्फल हो जाएगा, इसीलिए सॉरी मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता हूं। अब ये बड़ा देखिए कितना बड़ा टीका है एक्चुअली, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, क्योंकि केवल अगर आप उस श्लोक को पढ़े जब यदु ये मना कर रहा है, यदु आगे चल के जब ये मना करेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तब यदु तो क्या कहता है उसकी बातें अगर हम पढ़ेंगे ना, हे पिताजी, श्लोक है केवल, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे किंतु आपने वृद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, किंतु मुझे आपका बुढ़ापा तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? यदु कह रहा है। कहां पे कह रहा है? श्रीमद् भागवतम में है। अभी एक्चुअली इसको मैं नहीं 10-15 मिनट में समझा सकता, इसको समझाने के लिए 3-4 घंटे चाहिए, किस परिस्थिति में कैसे यदु क्यों कह रहा है, यदु का वास्तविक स्थिति क्या है आचार्यों के ज्ञान चक्षु से दिव्य दृष्टि से। केवल इसी श्लोक का हम अपने स्तर की बुद्धि का इस्तेमाल करने को जाएंगे तो यदु को गलत समझेंगे, हम समझेंगे यदु भोगी है, वो भोग करना चाहता है, उसकी इच्छा है भोग विलास की, और ये पिता को कहता है कि नहीं नहीं मैं भोग नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा ऐसा करके। लेकिन यदु एक महान भक्त था, वो ये बहाना भले रख रहा है लेकिन वास्तविक उसके मन में क्या विचार थे ये हमें आचार्य और शिला प्रभुपाद जी बता रहे इसी टीका में। प्रभुपाद जी कहते कि यदु ये सोच रहा है कि आगे चल के हमारे ही वंश में स्वयं भगवान कृष्ण यदुवंश में जन्म लेने वाले हैं, और इसीलिए इसी यदु से वो वंश का नाम यदु है और भगवान स्वयं आने वाले हैं, तो बोले भगवान के आविर्भाव के लिए मुझे ये वंश आगे बढ़ाना है, जल्द से जल्द ये वंश मीन्स भगवान अवतरित हो हमारे वंश में। उस इच्छा से यदु सोच रहा है कि अगर यहीं पे मैं अपना बुढ़ापा स्वीकार कर लूं, वंश आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो भगवान को आने के लिए और देरी होगी, क्या होगा आगे चल के पता नहीं, तो भगवान की प्राप्ति हमारे वंश में पुत्र के रूप में हुए इसलिए मुझे तो ये वंश चलाना आवश्यक है, और मुझे वंश चलाना है तो मैं वृद्ध कैसे बनूं अभी से ही। देखिए कितना तफावत होता है आम आदमी की सोच में और ऐसे महान व्यक्तियों की सोच में, और इसीलिए इन लोगों का वर्णन भागवतम में आता है। हालांकि पहली दृष्टि से ये सब गलत दिख रहे हैं हमें, ये क्या भोगी विलासी लड़ते झगड़ते अनेक पत्नियां रख रहे हैं, कभी स्वर्ग की सुंदर स्त्रियां अप्सराओं के साथ संग कर रहे, क्या कर रहे हैं ये लोग सब। पहली दृष्टि से ये लगेगा, लेकिन ये सारे धर्म के सिद्धांतों को समझ के ये लोग धर्म के सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी कर रहे कर रहे हैं। यहां तक कि यदु का ये जो वाक्य है कि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, तो एक एक अच्छा वैष्णव, हाँ एक अच्छा वैष्णव जिसके वंश में स्वयं भगवान अवतरित होने वाले, वो एक सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। क्या सिद्धांत? ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन लोगों के लिए पहले से ही ब्रह्मचर्य या संन्यास लेना संभव ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को तो युवान अवस्था में भोग विलास करते हुए उसका अनुभव करने के बाद, उससे दुखी होने के बाद उसे ये समझना होगा कि ये सब बेकार है, पूरा भौतिक दुनिया और ये भोग विलास सब किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता किसी भी परिस्थिति में, चाहे एक भिखारी रस्ते का हो चाहे बहुत बड़ा राजा क्यों ना हो। श्रीला प्रभुपाद जी इस संबंध में एक कथा कहते हैं इसी बात को समझाने के लिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने इस बात को समझाने के लिए एक बार एक कथा कही, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतिहास में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है। अलेक्जेंडर बहुत शक्तिशाली राजा था ग्रीस से, कुछ लोग का कहना ग्रीस से, कुछ लोग का कहना कोई और विस्तार से, जहां से भी हमें क्या लेना देना, वो भी एक इतिहास में मतभेद चल रहा है। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया, अपनी शक्ति से वो राजा था ना, तो सारे दूसरे अन्य देशों के ऊपर आक्रमण करेगा, उसे जीत लेगा, उसकी संपत्ति ले लेगा, उधर का सुवर्ण, उस समय की संपत्ति सुवर्ण चांदी और डायमंड हीरे मोती जवेरा, वो सब लूट लेगा, अपने पास रखेगा, वहां का भोग विलास करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, दूसरे देश को लूटेगा। ऐसा करते 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 उसने प्राय पूरा विश्व को जीता था, कुछ अपने भारत जैसे देशों को छोड़ सब कुछ जीत लिया था, बहुत भोग विलास कर रहा था। लेकिन भोग विलास करते 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 जब उसका अंतिम बुढ़ापा नजीक आया, अंतिम समय नजीक आया, तब उसने ये अनुभव किया कि अब वो खुद दुखी है, उसके पास सब कुछ है, सोना है, मोती है, जवेरात है, सारे विश्व की संपत्ति है, बड़े बड़े सैनिक उसकी सेना में है, उसका उसके आदेश का पालन करने के लिए हजारों लोग तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो विचलित था, असंतुष्ट था, दुखी था, कुछ कर नहीं पा रहा था, अब बुढ़ापा आ गया था तो भोग भी नहीं कर पा रहा था। वो इतना दुखी हो गया, जब उसकी मृत्यु की अवस्था आई तब उसने अपने जो आर्मी के जो कमांडर रहते हैं, चीफ जो रहते हैं, उसको बुलाया और अलेक्जेंडर ने मृत्यु के बिस्तर से उसको बताया कि मैं अब थोड़े समय में मरूंगा, मेरी तीन इच्छा है, उसको आप मेरे मृत्यु के बाद पूरी करेंगे, ये तुम्हें मुझे वचन देना पड़ेगा। अब अलेक्जेंडर इतना बड़ा महाराज था और ये आर्मी तो उसकी सेना थी, उसका चीफ तो तुरंत कहेगा हाँ महाराज बताइए आपके क्या तीन आदेश है, क्या इच्छा है, हम पूरी करेंगे। अब इतना बड़ा राजा था, उसने तुरंत हाँ बताया। तो अलेक्जेंडर ने कहा, शिला प्रभुपाद जी कहते अलेक्जेंडर ने कहा कि मेरी सबसे पहली इच्छा है कि मेरे मरने के बाद, वो क्रिश्चियन था ना, तो उसका अपने लकड़ी पे जैसे अर्थी लेके जाते हैं वैसा उन लोगों का रिवाज नहीं है ना, कॉफिन रहता है, कॉफिन बॉक्स पता है ना, क्रिश्चियन लोग को अंदर फुला के लेके जाते हैं। बोले मेरी अर्थी, मेरे कॉफिन को मेरे डॉक्टर लोग जो मेरी ये चिकित्सा कर रहे हैं ना, वही लोग उठा के लेके जाएंगे, और कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरा ये पहला इच्छा और आदेश है कि मेरे ये जो उनके पास एकदम वर्ल्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर को उसने रखा था उसकी बीमारी के लिए, बोले यही डॉक्टर लोग मेरे कॉफिन को उठा के स्मशान लेके जाएंगे, जहां भी इलेक्ट्रिक हाउस में लेके जाएंगे जलाने के लिए। तो वो लोग सोचे ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने भी कहा हाँ महाराज चिंता मत करिए हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा मेरा दूसरा आदेश है कि यहां से जब मुझे तुम स्मशान लेके जाओगे तो उस सारे पूरे रास्ते पे सोना चांदी हीरे जवेरात बिखर के रखे रहोगे, मेरा जितना खजाना वो सब वो रास्ते पे डाल देना, और उसके बाद तुम लोग चलना सोने के पथ पे मुझे लेके जाना, जवेरात हीरे मोती के पथ पर। और इतना था उसके पास इतना सोना मोती वगैरह, लंबा रास्ता उस तरह से वो लोग बुला के, तो पहले तो वो लोग सोचने लगे यार मर गए, मर जाएगा आदमी लेकिन संपत्ति भी लुटा के जाएगा, हम लोग पीछे क्या करेंगे। लेकिन अभी ना भी नहीं कर सकते, अलेक्जेंडर का प्रभाव यानी खतरनाक होता है, बुढ़ा हो गया तो क्या हो गया, ना नहीं बोल सकते। अच्छा बोले हाँ ठीक है महाराज, आपकी ये भी इच्छा पूरी करेंगे। अच्छा तीसरी इच्छा है मेरी कि कॉफिन जो होता है ना बॉक्स, उसमें क्या है मरे हुए आदमी को पूरा अंदर डाल के उस कॉफिन को पूरा बंद करते हैं और लेके जाते हैं। अलेक्जेंडर कहता है मेरे कॉफिन को पूरा बंद नहीं कीजिएगा, मेरी मेरा पूरा शरीर अंदर नहीं रहेगा, मेरे दो हाथ है वो कॉफिन के बाहर इस तरह से खुले रख के मुझे लेके जाना, इस तरह से खुले रहने चाहिए मेरे दो हाथ और इस तरह से मुझे लेके जाना। तो बोले ठीक है, लेकिन किसी को कुछ समझा नहीं कि ये सब तीनों इच्छाओं को क्या लेना है अलेक्जेंडर से। अब ये मरने वाला है, अब क्या इसकी इच्छा। तो फिर उन लोगों ने पूछ लिया, डॉक्टरों ने और सब लोगों ने मिलके, कि भाई ये तीन कैसी विचित्र इच्छा है, क्या कारण है, क्या मतलब है इसका। अलेक्जेंडर कहते हैं कि मैं पूरे विश्व को मरने के समय एक उपदेश देकर जाना चाहता हूं, कुछ सिखा के जाना चाहता हूं। तो बोले बताइए क्या सिखाना चाहते हैं, हमको भी सीखना है। शिला प्रभुपाद जी कहे वो बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा सिद्धांत उसने सिखाया, इसलिए प्रभुपाद जी इस कथा को कहते हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने कहा कि सर्वप्रथम मेरी जो इच्छा है कि एक्सपर्ट वर्ल्ड के जो फिजिशियन डॉक्टर वही लोग मेरा डेड बॉडी उठा के चलेंगे, इससे मैं ये सिखाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा राजा बन जाए और उसके पास कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर क्यों ना हो जाए, अंत में उसे मरना ही है और भगवान के अलावा उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। ये सारे डॉक्टर जो मुझे उठा के चले, ये मेरे चिकित्सक मेरे को नहीं बचा सके, ये उनके बस की बात नहीं है, केवल भगवान ही चाहे तो हमें बचा सकते, तब तक ही हम जीवित हैं, बाकी एक्सपर्ट डॉक्टर लोग भी मिलके कुछ नहीं कर सकते। और उस समय के डॉक्टर वास्तविक एक्सपर्ट डॉक्टर रहा करते थे, आजकल के जैसे नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च एंड डिस्ट्रक्शन वाले नहीं। कुछ लोगों ने सोचा रहेगा शायद मैं डेवलपमेंट बोलने जा रहा हूं, क्योंकि R&D का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले डॉक्टर, हालांकि उनको भी ठीक कहा जाएगा, एटलीस्ट रिसर्च एंड डिस्ट्रक्शन वाले प्राय, सभी डॉक्टरों की बात नहीं करता हूं प्राय, क्योंकि उनका दोष नहीं है, उनके पास वो पता ही, उनको पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है शरीर में, वो कुछ कर ही नहीं पाते, इंस्ट्रूमेंट पे आधारित है, तो इंस्ट्रूमेंट भी तो सब इन्हीं डॉक्टरों ने बनाया ना, जिनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, तो उनके इंस्ट्रूमेंट भी कोई रिपोर्ट ही नहीं ठीक से दे पाते, जब भी देखो कहते पता नहीं चल रहा है तुम्हें क्या बीमारी है, रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है, अब तुम्हें कहां से पता चलेगा भाई, जब तुम्हारे पेट में गड़बड़ होती है तब तुम्हें खुद को नहीं पता चलता है, तो दूसरे के पेट की गड़बड़ तुम्हें कैसे पता चलेगी, तुम दूसरे डॉक्टर के पास जाके कहते हो कि अरे मेरा पेट में गड़बड़ है जरा चेक करके दो वगैरह। तो आजकल के डॉक्टरों की बात छोड़ दो, लेकिन वो एक्सपर्ट डॉक्टर वो लोग भी नहीं बचा सके। पहले के समय में डॉक्टर होते थे नाड़ी को देख के बोल देते थे क्या बीमारी है, क्या दवा ये करो तो जिएगा ना तो मरेगा पक्का 100%, वो चलता भी था वैसे, लेकिन कब तक। अलेक्जेंडर ये सिखा चाहते थे डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति तुम्हें बचा नहीं सकेगा, भगवान जिस दिन तुम्हें मारना चाहते हैं आप राजा भी रहो, मैटर एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट मर के गया। अच्छा बोले इतना सारा सोना वगैरह क्यों रास्ते पे डालने को कह रहे, हीरे मोती जवेरात। तो बोले मैं ये जगत को सिखाना चाहता हूं कि तुम कितना भी परिश्रम करके कितना भी धन इकट्ठा कर लो, अंत में तो ये कुछ काम नहीं आएगा। देखो ये सारा मेरा धन रस्ते पे पड़ा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तो जाना है। अच्छा बोले खाली हाथ ऐसे लटका के क्यों। तो बोले खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है, ये मैं जगत को सिखाना चाहता हूं। मैं खाली हाथ ही आया था और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। पुत्र का जब जन्म होता है, समझो पुत्र या पुत्री का आज ही जन्म हुआ 10 मिनट के बाद, वो कितना दुर्बल है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई क्षमता नहीं है। अगर उसका पैर अगर कोई ऐसे उठाए 90 डिग्री एंगल पे और फिर वहीं छोड़ दो, वो धड़ांग करके गिरेगा और जीवन भर उसको लकवा रहेगा। वो हाथ से जो ऐसा पड़ा है लाचार, उसको अगर कोई ऐसा उठाए ऐसा 90 डिग्री पर छोड़ दो और धड़ करके गिरेगा और लकवा रहेगा हाथ का जीवन भर। इतना लाचार होता है पुत्र, इतना लाचार होता है जीव जन्म के समय, और वही माता पिता जो उसको जन्म दिए, अगर ये दोनों इसका जो ध्यान न रखें, हाँ इसको खिलाएं पिलाएं नहीं, इसको मच्छरों से और सब कीड़े मकोड़ों से बचाएं नहीं, हाँ इसका शरीर का रक्षण न करें, तो ये युवान बन ही नहीं सकता। वो इसके अपने आप के बल पे इम्पॉसिबल है। माता पिता ही उसको बड़ा कर रहे हैं। हाँ, वो कितना ध्यान, कितना कष्ट, ये तो गृहस्थ माता पिता हम लोग ही जानते हैं कि किसी बच्चे को बड़ा करना बोले तो बहुत कठिन काम है। शायद ब्रह्मा को ब्रह्मांड चलाने का भी उतना कष्ट नहीं होता रहेगा जितना गृहस्थ माता पिता को बच्चे को बड़ा करने को कष्ट होता है। और यही बच्चा आगे चल के कहता है, माता पिता तुमने हमारे लिए किया ही क्या। आजकल तो इतनी सुविधा है कि एक्चुअली माता पिता को तुरंत वीडियो वीडियो सब लगा के, हाँ वो कैसे बच्चा पहले दिन जन्मा तुरंत वीडियो लगा के पूरा रिकॉर्डिंग करके ही रखना चाहिए कि कैसा तू लाचार था। एक साल तो कम से कम उसका वीडियो रखना चाहिए, कैसा तू लाचार था, कैसे तू हमारे ऊपर आश्रित था। और आगे चल के अगर कोई बच्चा कहे कि तुमने हमारे लिए किया किया, देख वीडियो देख, एक पहले साल वाला वीडियो देख, फिर पता चलेगा कि क्या किया तेरे लिए। पिता पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता के आदेश के लिए अपना जान दे दे, जो भी कहते हैं करें। यहां तक कि हम लोग भक्ति वाले भले कहते हैं हमारे माता पिता तो केवल राधा कृष्ण है, तो मैं तो कहूंगा कि ठीक है, तो जन्मे ना उसी दिन राधा कृष्ण को बोलना था कि करो आओ मेरा पालन पोषण करने के लिए। उसी राधा कृष्ण ने माता पिता को वहां रखा था। अगर वो नहीं करते ना तो वो भी आके नहीं करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे करना है, मुझे पता है, मैंने कर दिया, रख दिया माता पिता को। अब फ्री विल पे चलेगा, वो माता पिता नहीं कर रहे तो ऐसे बच्चे अनाथ बन के घूम ही रहे। तो माता पिता की सेवा करना यहां तक दूसरों का तक कर्तव्य है, भक्तों का भी पहला कर्तव्य है। जो भक्त माता पिता की सेवा नहीं करते, संतुष्ट नहीं करते हैं, उनकी भक्ति का मार्ग बाधा में ही रहता है, यानी बहुत कठिन होता है, बहुत बहुत ही कठिन होता है। ये गलत सिद्धांत किसी ने कभी कहीं से सिखा दिया है शास्त्रों के बिना आधार पे कि माता पिता की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, अब हम भक्त बन चुके हैं। भक्त बन कहां, भक्त कहां बने, पहले वो तो देखना चाहिए ना। भक्त बने नहीं, माता पिता को फेंक दिया रास्ते में, आगे चल के वही ये जो बड़ा बड़ा प्रवचन देने वाला यही व्यक्ति आगे चल के 10-15 साल के बाद पत्नी को लेकर घूमता है, तब उसे वो माया जैसा नहीं दिखता है। हम भक्त बन चुके तो वैष्णवी परिवार से पत्नी लाए तो वो भी तो भोग है। एक्चुअली यदु वही कह रहा है। आगे चल के ययाति महाराज का जो पुरु नाम का पुत्र था उसने कहा कि हाँ पिताजी मैं अपना युवा अवस्था देने को तैयार हूं, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना ही मेरे लिए धर्म है, मैं इस आदेश का पालन करूंगा, आपने आदेश दिया मैं पूरा करूंगा, ले लीजिए मेरी युवा अवस्था, आपका बुढ़ापा मुझे दे दीजिए। उस पुत्र ने तुरंत स्वीकार किया। अरे पुत्र जल्दी भक्त बन सकते हैं, उन्हें भक्त बनना, देखिए भक्त बनने के लिए एक सरल रास्ता है, एक सिंपल फॉर्मूला है। हम अपनी इस युग में कि हम अपने साधना बल से अच्छे भक्त नहीं बन पाएंगे, बहुत कठिन है। हम केवल अन्य लोगों के आशीर्वाद से ही भक्त बन पाएंगे। इसीलिए अन्य लोगों का आशीर्वाद अति आवश्यकता होता है भक्त बनने के लिए। और वो कब मिलेगा, जबरदस्ती छीनने से मांगने से नहीं मिलेगा। जैसे पिछली बार मैं बता रहा था ना, शिष्य लोग गुरु के पीछे पड़ जाते, आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए, महाराज गिव यू ब्लेसिंग्स, तो कैसे मिले, ऐसे थोड़ी मिले। सेवा करनी पड़ती है, सेवा का भाव होना चाहिए और निर्मल निर्मल, कोई अपेक्षा नहीं और हम्बल हम्बल बोले तो नम्रता के साथ। जैसे इस मंदिर में मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे भक्त है अच्छे अच्छे जो एकदम नम्रता के साथ इतना परफेक्ट सेवा करते हैं ना, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, मुझे उनको देख के लगता है कि ये व्यक्ति सही में एक्चुअली भगवान के धाम जाने के लिए लायक है। हालांकि हमारी उनसे इतनी इतनी बोलते हैं घनिष्ठ मित्रता का संबंध नहीं है, लेकिन मेरे हृदय से ऐसे निकल जाता है कि इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए राधा गिरिधारी जी से भी कि हाँ इनको तो जरूर गोलक वृंदावन ले लेना। मैं बहुत लोगों को देखता हूं यहां पे, जैसे अपना जो तिलक आजकल जो प्रभु जी लगा रहे गर्ग मुनि प्रभु, देखिए कितने नम्रता से हमेशा सेवा करते रहते हैं। तिलक का उनका सेवा कितना परफेक्ट है, केवल इतना ही नहीं कि इधर लोग खड़े उनको तिलक लगा दिया मेरा ड्यूटी खत्म क्योंकि गुरु पूजा हो गया, नहीं, वो चाहते हैं कि लेट आने वाले लोगों के लिए भी तिलक का फूल संभाल के रखे, वहां बाहर खड़े रहेंगे, कोई आ रहा है तो उनको तिलक लगा के देंगे, सामने से बुलाएंगे, कोई ऊपर बैठा है तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर भी आते हैं, उनको वहां बैठे लोगों जो बात कर रहे हैं गप्पे लगा रहे उनको भी तिलक लगा के जाएंगे। तो एक्चुअली ये परफेक्ट सेवा का भाव है उनका, प्रेम है उनका कि नहीं सेवा करनी है हमें जो दी गई है बड़ी नम्रता से, चाहे कोई गप्पे लगाने ऊपर बैठा है तो उनको भी जाके प्रभुपाद जी का कृपा आशीर्वाद उसे देना है। वो ये व्यक्ति सोच सकता है कि इधर क्यों नहीं आया गुरु पूजा में, आशीर्वाद चाहिए तो तुम हमारे पास आओ, प्रभुपाद जी के पास और तिलक लेके जाओ। लेकिन ये प्रभुपाद जी का क्योंकि अनुयायी है ना, ये सोच रहे कि वो मेरे पास नहीं है तो हम जाके उनको प्रभुपाद जी का आशीर्वाद तिलक देते रहेंगे, तो बहुत अच्छा सेवा भाव है ना। ऐसा सेवा भाव होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त है, समय इतना मुझे परमिट अभी नहीं करा कि मैं सबका वर्णन करूं। कीर्तनिया कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, आज का कीर्तन करने वाले प्रभु जी कितना सुंदर कीर्तन कर रहे थे। पिछली बार एक्चुअली मेरे मुंह से निकल गया था कि यहाँ कीर्तन लोग ठीक से नहीं करते, क्योंकि उसमें उस पिछले दो दिन क्या हुआ था, लोगों का कीर्तन का आवाज नहीं आ रहा था, सिर्फ वाजिंत्र पिटाई का आवाज आ रहा था, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मेरे मुख से निकल गया कि क्या कीर्तन करते लोग। लेकिन समाओ भगवान का कैसा व्यवस्था, उसके बाद के दिन से मैं देख रहा हूं रोज मस्त कीर्तन हो रहा है, क्योंकि वो बोलने वाले का आवाज प्राधान्य है और वाजिंत्रों का टोटल आवाज कम है उससे, यानी एक्चुअली कीर्तन ध्वनि सुनाई दे रही है, तो वो परफेक्ट है। ऐसा ही कीर्तन प्रभुपाद जी चाहते हैं हमारे इस्कॉन मंदिरों में, कि जो गा रहा है उसका उसका जो आवाज है, जो ध्वनि है, जो दिव्य शब्द निकल रहे हैं वो प्राधान्य है, और वाजिंत्र के आवाज उसको सहाय करे, ना कि उसको खत्म करके वो अपना है भे 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 करते रहे, वो नहीं है कीर्तन। अगर जोर से सिर्फ करताल का आवाज आएगा और कीर्तन का कृष्ण का नाम ही नहीं सुनेगा, कीर्तन सही नहीं है। लेकिन आज का कीर्तन देखिए परफेक्ट चल रहा था, बोलने वाले का आवाज प्रमुख था और वाजिंत्र जितने बज रहे थे सब टोटल जो था वो कम था, वो उसकी सहायता कर रहे थे, दैट इज परफेक्ट। ऐसा ही कीर्तन इस्कॉन मंदिरों में चलता है, चलते रहना चाहिए, और ये इस्कॉन की परंपरा है। अब बहुत दिन से मैं देख रहा हूं, उस दिन के बाद मुझे लगता है शायद मैंने गलती से कुछ बोल दिया, कुछ हुआ क्या पता नहीं, लेकिन फिर मुझे मेरी गलती समझे कि नहीं कीर्तन तो बराबर ही हो रहा है। शायद उसी दिन कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ उत्साह में लोग कर रहे थे, आज बनामाली प्रभु गुरु पूजा गा रहे थे, परफेक्टली गा रहे थे, मस्त उनका उत्साह के साथ चल रहा था। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे भक्त है हमारे संस्था में जो अपना सेवा परफेक्टली करते हैं, और निश्चय ही नम्रता से यही सेवा भाव से वो भगवत धाम जाएगा, यही सेवा भाव अनेक अनेक वैष्णव के हृदय में ये प्रेरणा देगा कि नहीं इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इनको हमें आशीर्वाद देना चाहिए। जो आशीर्वाद के सक्षम है वो आशीर्वाद देंगे, और जो आशीर्वाद के सक्षम नहीं है वो प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता लेकिन मैं निश्चय ही प्रार्थना करूंगा ऐसे भक्तों के लिए कि नहीं नहीं ऐसे भक्त को तो भगवान प्रचार के लिए सुखमय जीवन भौतिक में इधर दिव्य भक्त का स्तर देके चालू रखे, प्रचार करते रहे, सेवा करते रहे, सबको भक्त बनाते रहे, लेकिन अंत में फिर जन्म मृत्यु का चक्कर उनका खत्म हो जाए। ऐसे बहुत भक्त है अपने यहाँ, चांद गोपी प्रभु जी को देख लीजिए, करे कैसे नम्रता से अपना आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते जा रहा है। उनका पूर्व इतिहास मैं जानता हूं, उनके साथ वाले जितने थे सब गृहस्थ बन चुके हैं, उनकी टीम के मैक्सिमम लोग, वो अकेले कैसे सब पूरा दृढ़ निश्चयता से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते जा रहे हैं, और जहां जो सेवा मिल रही है दे रहे हैं। उन्होंने अनेक इस्कॉन में सेवा की है, कई कितनी रिस्की सेवा की है, रिस्की यानी जो उनके खुद के जीवन के लिए बहुत खतरनाक था लेकिन इस्कॉन मायापुर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था, वो सब सेवा उन्होंने की है। और कभी गर्व नहीं करते, कभी वो कहेंगे नहीं कि अरे मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, इतना मैंने मायापुर के लिए किया है, पता है आपको, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। किसी अपने अंतरंग मित्र या घनिष्ठ मित्रों से बात करते होंगे लेकिन कभी आप जाहिर में नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं मायापुर से संबंध में था तो मुझे बहुत कुछ पता चला था, 3 साल मैं वहां था तो वहां से ही चांद गोपी प्रभु जी का पता चला था, फिर यहाँ बातचीत करते मैंने उनसे पूछा तो वहां उसका कन्फर्मेशन भी हुआ है। सब उन्होंने ऐसी रिस्की सेवा मायापुर इस्कॉन के लिए की, तो ऐसी सेवा करने वाले के लिए तो भगवान स्वयं उन्हें लेने आ सकते हैं, प्रभुपाद जी स्वयं आएंगे। कि मायापुर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इतना रिस्की सेवा, अपना जीवन को रिस्क पे रख के सेवा किया, तो इन लोगों के लिए तो भगवत धाम जाना सरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल सेवा नहीं है, साथ में नम्रता चल रही है, मेन क्वालिफिकेशन नम्रता है। सेवा जीवन भर करो, नम्रता हट गई तो सब बाद में इंटू जीरो हो जाएगा। आपके पास 10 करोड़ हो या अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, लेकिन मृत्यु रूपी जीरो जब उनके जीवन में मल्टीप्लाई हो गया तो सब जीरो हो गया। वैसे भक्त का जीवन कितना भी अच्छा सेवा करे, कितना भी कीर्तन करे, कितना भी अच्छा प्रवचन दे, लेकिन अहंकार रूपी जीरो के साथ जब उसका गुणाकार मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। तो शिला प्रभुपाद जी हमें बाहर वालों से क्या सीखना है वो भी सिखा देते हैं, जैसे अलेक्जेंडर से, पर आचार्य और भक्तों से क्या सीखना है वो तो हम सीख ही रहे हैं। इतना अच्छा परफेक्ट परंपरा और परफेक्ट सिद्धांत आदेश हमको इतना परफेक्टली दिया गया ना कि इसका सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति निश्चय ही भगवत धाम जाएगा। ओनली क्वालिफिकेशन इज नम्रता, जस्ट एक्सेप्ट। अपना स्वाभिमान जो मैंने शुरुआत की थी ना, अपना स्वाभिमान के मैं तो कृष्ण का दास हूं, तो ऑब्वियसली हम सभी के दास हो गए क्योंकि सभी कृष्ण के अंश है। थोड़ा प्रॉब्लम जैसा लगता है यार, सबका दास, सब कृष्ण के अंश है, मुझे तो केवल कृष्ण का दास बनना है, दूसरे लोगों का दास नहीं बनना है ना। अपना अहंकार ये कहता है मैं क्यों दूसरे का दास बनूं, मुझे तो केवल कृष्ण का बनना है। लेकिन शास्त्र कहता है कि सभी कृष्ण के अंश है, अगर आप इनके दास बने तो ही कृष्ण के दास हो, अन्यथा नहीं हो। तो वो प्रॉब्लम केवल अहंकारी व्यक्ति को प्रॉब्लम लगता है, लेकिन जिसका हृदय में अहंकार नहीं है ना उसको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। वो बोलते क्या प्रॉब्लम है, वो कृष्ण का दास है ना, मैं इसकी भी सेवा करूं। शिला प्रभुपाद जी करते थे ना, बर्तन धोते थे विदेशी म्लेच्छ हिप्पी ड्रग एडिक्ट लोग आए कीर्तन में, वो दारू पी के आते थे, बैठते थे, प्रभुपाद जी उनको कीर्तन सुनाते, भगवदगीता सुनाते, प्रसाद देते, वो जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे। और ये महान सन्यासी वृंदावन के प्रसिद्ध सन्यासी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य श्रीमद् भागवतम के टीकाकार, हाँ, ये महान सन्यासी नम्रता से उन म्लेच्छ लोगों का बर्तन धोते थे। तो इन आचार्यों से हम सीख रहे हैं, सीख तो हम बहुत कुछ रहे हैं, कर्ता कितना है कोई, कौन व्यक्ति, कौन सा भक्त, यही उसके जीवन की सफलता डिसाइड करता है। अगर हम सीखें लेकिन कुछ करें नम्रता से, जैसे ये गर्ग मुनि प्रभु या अन्य वासुदेव प्रभु और ये लोग कर रहे हैं, तो हम जाएंगे भगवत धाम। और जो मेरे जैसा केवल सीख रहा है कर नहीं रहा है तो मुश्किल ही रहेगा। फॉर हिम पाथ इज ऑलवेज डिफिकल्ट, उसके लिए सदैव ये उसका प्रश्न रहेगा कि यार भक्ति बहुत कठिन काम है, भक्ति कठिन है, भक्ति कठिन है। वास्तव में भक्ति कठिन नहीं है, सबसे सरल काम है। प्रभुपाद जी कहते हैं यू हैव टू सर्व, हाँ, आपको सेवा तो करनी ही है, 100% निश्चित है। किसकी करनी है वो केवल आपको डिसाइड करना है, माया की या कृष्ण की करना है वो निश्चित है। आप ना भी बोलो ना तो माया मार मार के जबरदस्ती काम करवाएगी, ऐसी धुलाई पिटाई करेगी पत्नी की, बच्चों की, गवर्नमेंट की, टीचर्स की, प्रिंसिपल की, हाँ, सेवा में ऐसी लगाएगी कि तुम्हारे मुंह से जैसे घोड़ा दौड़ के फीना निकालता वैसे फॉर्मिंग हो जाएगा, हाँ, मुंह से एकदम ये हो जाएगा। वो प, वो बोलते ना अपवर्ग, प वर्ग जो है ना संस्कृत का, वो परिश्रम कर करके तुम्हारा मृत्यु आ जाएगा, सेवा किए बिना तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। तो डिवोटी हैज टू डिसाइड कि मैं कृष्ण की सेवा करूं या माया की सेवा करूं। जो इंटेलिजेंट है वो कृष्ण की करेगा, और जो मूर्ख है मेरे जैसा वो क्या करता है, नहीं नहीं अभी भी थोड़ा ट्राई कर लेता हूं, अभी भी थोड़ा ट्राई कर लेता हूं, शायद माया के साथ सुख मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रायल जीवन भर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि काम और लोभ, इन दोनों को संसार में जितना भी धन है और जितनी भी सुंदरता है, जितनी सुंदर स्त्रियां ये सभी भी इस व्यक्ति को दी जाए तो भी ये संतुष्ट नहीं किया जा सकता, अपर्याप्त है, उसके लिए वो भी अपर्याप्त है। इस भागवतम के इसी अध्याय के टीका में प्रभुपाद जी ने लिखा है, कामी और लोभी व्यक्ति की संतुष्टि, संसार का सारा धन और सभी स्त्रियों को भी दे दी ना उसे, तो भी संतुष्टि उसकी नहीं हो सकती। उसकी संतुष्टि तभी होगी जिस दिन वो नम्रता से हृदय से ये स्वीकार कर ले कि मैं कृष्ण का दास और नम्रता से मैं सबका सेवा करूंगा, सेवक बनूंगा। ये जिसके लिए संभव है वो भक्त बनेगा, ये जिसके लिए अभी भी बुद्धि के स्तर पे उसका संघर्ष चल रहा है कि करूं ना करूं नहीं कर सकता, उसके लिए असंभव हो जाएगा। वो भले सेविनु कृपण दुर्जना चपल सुख लबल आगिरे, उसका जीवन अंत में ये गाना गाते हुए वो मरेगा। हरे कृष्णा, इला प्रभुपाद की। कोई क्वेश्चन कमेंट्स? आजकल का इस्कॉन इतना समझ चुका है और आजकल के जो समझदार भक्त लोग हैं, गुरु जन या लीडर्स या काउंसलर्स, ये जरूर उस व्यक्ति को सलाह देंगे कि अगर तुम्हारा भाई है, हाँ, तुमसे थोड़ा छोटा या तुमसे बड़ा भाई कोई है जो वृद्ध माता पिता का देखभाल कर पाने में सक्षम है, तो ही तुम मंदिर फुल टाइम ज्वाइन करके ब्रह्मचारी बनो। अन्यथा अगर तुम अकेले ही हो और तुम्हारे माता पिता निश्चय केवल तुम पर आधारित है, तो तुम घर पे रह के भक्ति करो और उनकी सेवा भी करते रहो। और उसमें अगर विवाह भी करना पड़े, क्योंकि पता नहीं ना, माता पिता 10 साल जिएंगे, 15 साल जिएंगे, 20 साल, तो हो सकता है ब्रह्मचारी के बदले गृहस्थ आश्रम आपको स्वीकार करना पड़े, तो कीजिए। मेरा तो यही कहना है और समझना है, कीजिए, क्योंकि आपकी भक्ति के लिए वो बाधा नहीं बनेगा वो गृहस्थ जीवन, वो आशीर्वाद के साथ आपको अच्छा एक भक्त बनाएगा। लेकिन अगर जिद पकड़ लेंगे कि नहीं, ये सब माया है और बूढ़े माँ बाप का जो होता है होने दो, कुछ भी करने दो, मैं मेरा मंदिर में हरे कृष्णा करके एक महान भक्त बनूंगा। मैंने ये अनुभव किया है, शायद आप लोगों में से किसी ने अनुभव किया ही रहेगा, इससे ही 15-20-25 साल 30 साल बीत जाते, हम भक्त नहीं बन पाते हैं। प्रामाणिकता से हम अपने हृदय से कह सकते हैं हमारी साधना अभी फल नहीं ला रही है, क्योंकि हमने बहुत वैदिक सिद्धांतों को गौर से समझा नहीं है, पालन नहीं किया है। कुछ लोग कहते हैं श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, कुछ लोग कहते हैं माता पिता की परवाह करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये सब भौतिक कार्य ये है वो है वो है। अरे लेकिन ये सब वेदों में कहा गया है किन लोगों के लिए, ये भी समझना चाहिए, मेरे और आपके लिए नहीं, एक महान वैष्णव के लिए कहा गया, जो सत प्रतिशत ऐसा बोलते हैं ना कि कृष्ण की शरण में उनके चरण कमलों में अपना पूरा मन केंद्रित करेंगे, उनको भोग विलास क्या है कुछ पता ही नहीं है, कुछ करने वाले भी नहीं है, असंभव है। तो हमारे लिए वो सब संभव नहीं होता है, तो हम आडंबर के स्तर पे ज्यादा दिन नहीं चल सकते। हाँ, तो उनके लिए ही तो वो सारे नियमों को पालन करके चलना चाहिए ना। जिस दिन वो प्रेमी भक्त बन जाएगा ना, उसके बाद उसके माता पिता को संभाल रखने के लिए वो व्यक्ति जाएगा तो स्वयं भगवान जाएंगे। हाँ, तो उस प्रोसेस के साथ में नियमों को पालन भी करना पड़ेगा। होती है तो इस प्रोसेस के साथ में नियमों का पालन करना पड़ेगा, माता पिता का ध्यान रखना या गृहस्थ है तो श्राद्ध वगैरह करना, ये सब नियमों का उसको पालन करना पड़ेगा। हाँ, तो आपने अच्छा बताया, आप खुद ही बता रहे जो शरण लेता है। अब हमें ये अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, ये खुद को ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं शरण ले रहा हूं भगवान की कि नहीं। देखिए, वो तो आप ही जानते हैं, आपके गुरु जानते हैं, भगवान ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान रहा है। ब्रह्मचारी बनने से माता पिता की सेवा की है। कई ब्रह्मचारियों के माता पिता दुखी और वृद्ध और बीमार अवस्था में सड़ रहे हैं। शरणागत भक्तों के लिए। हाँ, तो शरणागत हो गए तो माता पिता क्या सभी ऋण चुक गए शरणागत के लिए, लेकिन क्या हम शरणागत है? नहीं नहीं नहीं, ये जो आता है वो शरणागत है, वो जरूरी नहीं। लेने किस इच्छा से आया है और क्या कार्य कर रहा है वो कहना हम नहीं कर सकते। मोर यही अभिलाषा अमेरिका दियो वासा, ऐसे भी लोग आते हैं। नो वन नोस, नो वन नोस, मोर यही अभिलाषा विलास सुंजे दियो वास वाले सभी लोग आते हैं, ऐसा कह नहीं सकते। कैसे करेंगे? छोड़ के आया है दुखी अवस्था में, माता पिता नहीं बोल रहे कि तुम अमेरिका जाओ, और समझा नहीं मैं। देखिए, कोटि 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 जीवात्मा है और कोटि कोटि जीवात्मा अपनी अपनी स्व इच्छा से करोड़ों भोगों का विलास भोग करने की इच्छाएं करते रहते हैं, अब छोटा मोटा हम छोटा मोटा भक्ति का कार्य कर लेते हैं तो ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि आप भगवान हमारा सब बाकी का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे नौकर बन चुके हैं। अभी वो हमारे नौकर नहीं है। हम ये गलत सिखाते हैं सबको कि अब तुम जब कर रहे हो ना, अब भगवान तुम्हारा काम करेंगे। अरे क्या भगवान को यही पढ़ाए कि देखो भौतिक जगत में कौन सा भक्त मेरा नाम दे, अच्छा अब उसके जाके माता पिता की मैं सेवा करूं, उसका नौकरी नहीं कर रहा है, धंधा नहीं कर रहा है तो उसका धन की मैं व्यवस्था करूं, हाँ उसका बच्चा बीमार हो गया तो उसका बीमारी दूर कर, वो तुकाराम के लिए करेंगे, कोला बेचारा श्रीधर हालांकि वो तो ग्रस्त नहीं था, ऐसे लोगों के लिए करेंगे। कौन कौन? हाँ वो तो मैंने कहा ना, गुरु जब आपको अपने बारे में जानना है तो गुरु से पूछ लो कि महाराज मैं माता पिता की सेवा छोड़ के मंदिर में पूर्ण सेवा करना चाहते हैं, आपका क्या आदेश है? जो गुरु कहें वो स्वीकार करो। नहीं है, वही तो मैं कहता हूं, हमें नहीं है, केवल गुरु, हमारे दिखता गुरु ही हमको कह सकते हैं। हम तो केवल शास्त्रों से ये वर्णन कर सकते हैं। अधिकार तो मुझे किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि मैं काउंसिलर भी बनूं तो मेरा अधिकार नहीं है। वो अधिकार उस व्यक्ति को कौन सा आदेश देना है, वो अधिकार केवल गुरु दे रहा है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, वो बोलने का अधिकार हर दीक्षित भक्त को होता है, तो उस अधिकार से शास्त्र क्या कहता है ये हम कह सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर मुझे पूछेगा तो मैं तो वही कहूंगा कि भाई अपने गुरु से वार्तालाप करके उनसे एक आदेश ले लीजिए। अगर उन्होंने आदेश दिया कि माता पिता की सेवा करो तो फिर जाना, तब ये मत कहना कि नहीं अरे गुरु को क्या कुछ पता नहीं है। ऐसे होते हैं, मैंने देखा है इस कॉल में कई कभी को बोलते हैं अरे गुरु को हमारी पूरी परिस्थिति पता नहीं है, वो तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसे होते हैं। तो तब तुम्हारा विश्वास, अगर मैं जो चाहता हूं वो गुरु ने कह दिया तो बोलते गुरु बहुत अच्छे है, अरे हमारे गुरु जैसे कोई गुरु नहीं है, ऐसा कहेंगे। लेकिन मैं जो चाहता हूं अगर गुरु ने नहीं कहा तो बोलते नहीं गुरु को पता नहीं है ठीक से पूरी बात, वो जानते नहीं है पूरी परिस्थिति को, इसलिए ऐसा बोल दिए। कई बार कभी कभार ऐसे कहते हैं गृहस्थ लोग कि अभी वो तो सन्यासी है ना, उनको गृहस्थी के बारे में कहां से समझेगा, ऐसा भी बता देते हैं। तो वो अगर शुरुआती अविश्वास से है तो बेटर है कि दीक्षा ही मत लो, जब तक ये तुम्हारा दृढ़ निश्चय न हो जाए कि अब जिस गुरु से मैं दीक्षा ले रहा हूं, जिसकी शरण में जा रहा हूं, वो जो कहेंगे मैं करूंगा, सोल्ड सर्वेंट के जैसा, उसकी बिक्री हो चुकी है। पुराने जमाने में गुलाम की जब बिक्री हो जाती तो कैसा है, सोल्ड सर्वेंट स्लेव, अब ये जो मालिक कहेगा वो करेगा। एक्चुअली वास्तव में शिष्य वैसा होना चाहिए अगर वो सफलता चाहता है, हम लोग वैसे नहीं बन पा रहे वो अलग बात है, लेकिन जो सिद्धांत है वो तो सिद्धांत ही रहेगा ना। अब सिद्धांत तो कोई दोहराना पड़ेगा बार बार, हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि सिद्धांत बोलने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो सिद्धांत बताया जा रहा है पहला वो सही है, अगर सही है तो मैं इसमें से कितना कर पाऊं, बस उतना ही सोच के अपनी सीमा तय कर लेनी चाहिए। बोलने वाला व्यक्ति क्या करेगा उसे हमें क्या ले लेना, क्योंकि वो अगर बोल रहा है और नहीं कर रहा है तो वो भी नरक में जाएगा, और जब हम अगर नरक में जाएंगे तो हम यमराज को ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे कि बोलने वाला वही कर रहा था तो वो इसके लिए मैं भी वही किया, आप उसको क्यों नहीं भेजते, तो यमराज कहेगा देखो तुम्हारे आगे है वो, तुम्हें जहां मैं लेके जा रहा हूं वो तुम्हारा बोलने वाला बैठा है ना, उसकी चिंता मत करो, तुम भी आओ, वेलकम, एसोसिएट विथ हिम। तो हमें ये नहीं गलती करनी चाहिए कि बोलने वाला क्या कर रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि बोलने वाले का सिद्धांत शास्त्रोक्त है कि नहीं, आचार्य ने बताया, शिला प्रभुपाद जी ने बताया है मंजूर, अब इसमें से मैं कितना कर सकूं, जितना कर सकते हैं उसका प्रयत्न चालू रखना चाहिए नम्रता से, जितना नहीं कर सकते हैं उसका नम्रता से स्वीकार करना चाहिए कि आई एम अनेबल टू डू इट। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई विथ स्क्रिप्चरल कोटेशन कि मैं जो नहीं कर रहा हूं वो एक्चुअली सही है, उसका जस्टिफिकेशन देने की ट्राई मत करो। जैसे कल एक व्यक्ति मेरे साथ चल रहा था तो उसने कहा कि मैं चाय पीता हूं तो इसमें क्या बुरा है, उन लोगों से तो अच्छे है ना कि जो चाय पीते नहीं है, कुछ पालन नहीं करते लेकिन मंदिर में गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों से तो मैं कई गुना अच्छा हूं ना। मैंने तुरंत बताया देखिए प्रभु जी वो लोग की छोड़ो, जो है वो अलग विषय, उसकी चर्चा अलग करेंगे, लेकिन आप जो चाय पीते हैं वो गलत बात है, वो आपको पता है, आप नम्रता से स्वीकार करो ना, उसको जस्टिफाई करने का क्यों प्रयत्न कर रहे हो कि मैं उन लोगों से अच्छा हूं, है ना। वो जस्टिफिकेशन देने का वेद से ट्राई मत करो, शास्त्रों से या अनुभव पे वो छोड़ दो, तुम वो दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना है। वैसे बिन लादेन तो बंदूक लेके सबको मारता था, तो आप भी जाओ ना मारने, पता चल जाएगा कि कैसा हो तुमको ओबामा क्या कर रहा है, तुम्हारी हालत कितनी खराब कर देगा। ये करता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो वो अलग विषय है, अलग चर्चा है। हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो गलतियां हैं, उसे अगर हम नम्रता से स्वीकार करेंगे ना, तो आगे चल के इसको सुधारने का डेफिनेट सुविधा मिलेगा, डेफिनेट किसी का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छा संग मिलेगा। लेकिन अगर हमारी गलतियों को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, कवर करेंगे, तो इम्पॉसिबल है हम सुधरेंगे। हरे कृष्णा। सॉरी मैंने समय बहुत ले लिया है, क्षमा करना, लेकिन वो प्रभु जी के प्रश्न ने मुझे बोलने के लिए और प्रेरित किया। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद की।